ओम शांति। आज 26 मार्च 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुनें और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, 4:30 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। YouTube पर लाइव पर भी जुड़ सकते हैं, Google Meet पर भी जुड़ सकते हैं। दोनों लिंक दिए हुए हैं, एक ही लिंक रहते हैं चारों टाइम रोजाना के लिए। यदि आपको किसी प्रकार से जुड़ने में कठिनाई आ रही है तो आप इस सामने जो वीडियो देख रहे हैं इसमें नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आप अपना सुझाव दे सकते हैं। ओम आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कैसे मीठे बच्चे, तुमने बाप का हाथ पकड़ा है, तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते भी बाप को याद करते करते तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। हमने हाथ पकड़ा है बाप, जो अभोक्ता है अशरीरी है उसका हाथ है उसकी श्रीमत। हमने उसकी श्रीमत पर चलने का निर्णय लिया है, ये है बाबा की उंगली पकड़ना। बाबा की उंगली पकड़कर चलना अर्थात श्रीमत पर चलना। हम बाबा की श्रीमत पर चलते रहेंगे, बाप को याद करने का मतलब है बाबा की श्रीमत पर हम चल रहे हैं, तो चलते चलते हम परिवार में रहते हुए, संसार में रहते हुए, सबके साथ रहते हुए, सबके साथ तोड़ निभाते हुए हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, क्योंकि बाबा आकर हमें सबको मिलकर कैसे रहना है ये सिखाते। बाबा आकर हमें घर से बाहर निकलने का, संन्यास करने का कोई भी रास्ता नहीं बताता। हमारा संन्यास है बेहद का, और दुनिया वाले संन्यास करते हैं हद का, वो 2, 4, 5, 10 लोगों को छोड़कर जाते हैं और अनेकानेक कितनी भी भीड़, हर एक की अपनी योग्यता के आधार पर वो उनके बन जाते। और बाबा हमें बेहद से निकाल बेहद में डालते, बेहद से निकाल, बेहद से निकाल कर बेहद में डालते। बेहद जो सत्य नहीं है, बेहद के असत्य से निकालते हैं, बेहद के सत्य में डालते। ये झूठी काया, झूठी माया, झूठा ये संसार, देह सहित जो कुछ भी हमें दिखाई देता है वो बेहद की झूठी दुनिया है। उस बेहद की झूठी दुनिया में से निकाल कर बेहद की सच्ची दुनिया मीन्स बेहद की आत्माओं को अपना बनाते, तभी हम एक साथ न्यारे और प्यारे बन सकते। बेहद का प्यार हमको करना है बेहद की आत्माओं के बाप के साथ, तो सबके साथ ऑटोमेटिक होता है। और बेहद की इस नश्वर दुनिया से हमारा मोह खत्म। नश्वर मोहा अर्थात ये नाकों से दिखाई देने वाली بے حد کی دنیا سے موہ ختم ہو گیا. سمرتی لبدا اور مجھے سمرتی آ گئی ہے کہ بے حد کی آتمائیں باپ سہیت میری بابا کے ساتھ میری, تو مجھے کسی بھی آتما سے ذرا بھی اپنے آپ کو الگ کرنا نہیں ہو سکتا, کیونکہ جو بے حد کا نیارا ہوگا وہی بے حد کا پیارا, بے حد کا پیارا بھی وہ ہو سکتا ہے جو بے حد کا نیارا. ایسی عجیب ادبھت انوکھی پڑھائی ہم پڑھ رہے ہیں اور ہم وہ انوکھے ونڈرفل بچے ہیں جو ستو پردان بن جائیں گے, بن رہے ہیں, جو پھول کھل رہے ہیں. ہم وہ پھول نہیں ہیں جو کھل نہیں سکتے, ہم وہ پھول ہیں جو کھل رہے ہیں, ہاؤ فل. ہم سب کو آگے بڑھنے کی امیدیں. پرشن, تم بچوں کے اندر میں کون سا الاس رہنا چاہیے, تم بچوں کے اندر میں کون سا الاس رہنا چاہیے, خوشی رہنی چاہیے, اڑنے کی اچھا ہونی چاہیے, تخت نشین بننے کی ودھی کیا ہے. جواب بھی ساتھ میں دے کر دوسرے کوشچن سے پوچھ رہے ہیں, تخت نشین بننے کی ودھی کیا ہے. تو پہلا تو اتر آٹومیٹک پرشن میں آ جاتا ہے کہ ہمارے اندر یہ امنگ الاس ہونا چاہیے کہ ہم بابا کے دل تخت پر بیٹھے. اب بابا کے دل تخت پر بیٹھنے کی ودھی کیا ہے جانتے تو ہم سارے بچے ہیں, کون بتائے گا؟ بابا کا کہنا ماننا, باپ کا کہنا ماننا, سدا الاس رہے کہ گیان ساگر باپ ہمیں روز گیان رتنوں کی تھالیاں بھر بھر کر دیتے. اب جتنا یوگ میں رہیں گے ارتھات جتنا باپ کا کہنا مانیں گے اتنا ہماری بدھی کنچن ہوتی جائے گی. کنچن ہونا مانا پیور سونا ہونا, شدھ ہوتے جانا, جس میں ذرا بھی ملاوٹ نہ ہو اسے کہتے ہیں شدھ کنچن. کنچن مانا جس میں اور کچھ نہیں. سونا ہوتا ہے 24 کیرٹ, 23 کیرٹ, 22 کیرٹ, 15 کیرٹ, 10 کیرٹ, پرنتو کنچن مینس کنچن, نو مکس ہوتی جائے گی. یہ اویناشی جان رتن ہی ساتھ میں جاتے ہیں. تخت نشین بننا ہے تو مات پتا کو پورا پورا فالو کرو. برہما بابا مما دونوں کو کیا کرو, پورا پورا فالو کرو, ان کی فری مت انوسار چلو, اوروں کو بھی آپ سمان بناؤ. تو برہما یدی ماں ہے تو شیو ہمارا باپ ہے, تو یہ مات پتا ہو جاتے ہیں, اور برہما باپ ہے تو مما ہمارے ساتھ ہو جاتی ہیں. دونوں ساکار میں ہمارے مانیٹر ہیں, آدی گائیڈ ہیں, جن کو دیکھ کر ہم نے بھی ان کے قدموں پر قدم رکھنا ہے. کیسے انہوں نے سوئم کو سمپن بنایا ایسے ہم نے بھی سمپن بنانے کا پرشارتھ کرنا. بابا کی سری مت پر چلنا ہے, سری مت شیو بابا کی. تو جب سری مت آتی ہے تو باپ ہمارا شیو بابا ہے اور ماں ہماری برہما. ان کی سری مت انوسار چلو, اوروں کو بھی آپ سمان بناؤ. خود کو بھی اپنے جیسا بنانا ہے. جو گن ہم نے اپنے جیون میں دھارن کیے ہیں وہ گن ہم نے ان کو بھی دھارن کرنے کے لیے سکھانا. اوم شانتی. روحانی بچے اس سمے کہاں بیٹھے ہیں, کہیں گے روحانی باپ کی یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں یا پاٹشالا میں بیٹھے ہیں. بدھی میں ہے کہ ہم روحانی باپ کے آگے بیٹھے ہیں, वो बाप हमें हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अथवा भारत का राइज और फॉल, उत्थान और पतन कैसे होता है सीढ़ी के चित्र पर समझाते हैं, कैसे भारत का उत्थान होता है और कैसे पतन होता है, 84 जन्मों की सारी कहानी सुनाते हैं। ये भी बताते हैं भारत जो पावन था वे अब पतित है, भारत सिरताज था फिर किसने जीत पाई, भारत सिरताज था फिर किसने जीत पाई अर्थात किसने इसको हराया, भारत सारे भारत पर एक ही राज्य था जिसके सिर पर ताज था, कोई दूसरा राज्य था ही नहीं, फिर किसने आकर के भारत को हराया, कोई बाहर से आया था क्या?
नहीं भाई जी, रावण ने हराया।
रावण ने हराया, ये कहाँ बैठा था? ये हमारे अंदर छुपा बैठा था, कहीं बाहर नहीं था। हाँ जी, देहभान में आने से अंदर ही था, हमारे अंदर ही था, आत्मा के अंदर ही रावण, कहीं बाहर रावण नहीं है। हाँ, मर्ज और इमर्ज होते रहते, जैसे देखते हैं उनके मतलब का कोई आ गया तो तुरंत वो संस्कार आ जाता है, हाँ मैं आ गया हाजिर। अच्छे भले चलते चलते बाबा की श्रीमत की उंगली छोड़कर रावण का संस्कार जागृत हो जाता है और अपना काम कर देता, अच्छा भला शांत बैठा होगा, ऐसा उबाल आएगा सारा तहस नहस करके रख, बाद में चाहे बैठ के रोते रहे, उस टाइम तो वो अपना काम कर ही देगा जब उसने करना। राजाई गवा दी तो फाल हुआ, राजाई गवा दी तो फाल हुआ, हुआ ना, कोई राजा तो है नहीं, अगर होगा भी तो पतित ही हो, कोई राजा तो है नहीं, अगर होगा भी तो पतित ही हो, और पूरी दुनिया की बात कर रहे हैं, कोई राजा है नहीं, अगर होगा भी तो पतित ही होगा। कितनी क्लियर लाइन बाबा देते, पूरी दुनिया में कोई भी राजा नहीं होगा, होगा भी नाम के लिए राजा होगा परंतु पतित होगा, जितने भी किंग हैं, किंग जॉन साहब कौन कौन से बने हुए हैं, यानी वो अपने छोटे से इलाके के किंग हैं, भूटान का राजा है, नेपाल का राजा है, परंतु कैसे होंगे, एक लाइन ने सारा साफ कर दिया, पतित ही होगा। इस ही भारत में सूर्यवंशी महाराजा महारानी थे, सूर्यवंशी महाराजाएं और चंद्रवंशी राजाएं थे, सूर्यवंशी को महाराजाएं कहा जाता है और चंद्रवंशियों को राजाएं कहा जाता है, अब समझ में आ गया, अंतर भी बहुत क्लियर क्लियर बाबा समझा रहे हैं। ये बातें अब तुम्हारी बुद्धि में है, दुनिया में ये बातें कोई नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो, हमारा रूहानी बाप हमको पढ़ा रहे हैं, रूहानी बाप को हमने हाथ पकड़ा है, बल हम रहते ग्रस्त व्यवहार में है परंतु बुद्धि में है कि अभी हम संगम युग पर खड़े। यह छोटी सी बात हमें समझनी होगी, महाराजाएं होते हैं सत्ययुग में, राजाएं होते हैं त्रेता में, तो चक्रवर्ती राजाएं कहाँ होते हैं, चक्रवर्ती राजा किसे कहा जाता है, राजाएं किसे कहा जाता है और महाराजाएं किसे कहा जाता है, ये तीनों में क्या अंतर है। चक्रवर्ती राजा कहा जाता है जो सबसे बड़ा राजा हो, उसके अंदर और बाकी छोटे छोटे राजाएं होते हैं।
चक्रवर्ती राजा भी भाई जी सत्ययुग में होते हैं।
हाँ, चक्रवर्ती राजा वो होता है जिसके अंदर बाकी सारे छोटे छोटे राजाएं या महाराजाएं दोनों होंगे, महाराजाएं हैं तो राजाएं हैं तो, और महाराजाएं और राजाओं में क्या अंतर होगा, क्योंकि वो अपने इलाके के कंप्लीट राजा हैं अपने क्षेत्र के। सतयुग में क्षेत्र ही एक होता है तो वहां महाराजाएं होते हैं। अब यहां पर महाराजाओं के ऊपर तब कोई राजा बने जब मतलब चक्रवर्ती राजा तब बने, जो मेरे को समझ में आता है कि जब कोई और है।
एक मुरली में पढ़े थे कि महाराजा वो है जिसके पास धर्म सत्ता या राज सत्ता
दोनों
ही है। राजा वो है, राजा के पास राज सत्ता है, धर्म सत्ता नहीं।
मैं वही आपको बता, वही मैं कर रहा हूँ, क्योंकि यही बात अरस्तु ने कही। क्योंकि अरस्तु ने भी यही कहा कि जब एक राजा होता है तो एकदम व्यवस्था बड़ी परफेक्ट होती है, उसको उसने नंबर वन दिया। जब वो राजा भ्रष्ट होता है तो सेकंड स्टेज हो गई। तो उसके बाद जब राजा एक राजा बेस्ट से भ्रष्ट हो जाता है, अच्छे से बुरा हो जाता है, तो वो शक्ति दो के पास चली जाती है। दो के पास जाना मतलब कि राज सत्ता अलग और धर्म सत्ता अलग। इस बात को हम पूरी दुनिया के अंदर देखते हैं कि राज सत्ता और धर्म सत्ता पहले एक के पास होती है, फिर राज सत्ता और धर्म सत्ता दो जगह हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं न्यायपालिका और राज्यपालिका। तो दो के पास जाने का क्या हुआ कि जो जैसे धर्म गुरु है, वो धर्म गुरु एक अलग से बन गया जो न्याय करेगा, चाहे वो मौलवी हो, तो चाहे वो हर एक धर्म के अंदर मतलब इस प्रकार की व्यवस्था बनी। राजा अलग है, राजा राजकीय कार्य करेगा और धर्म का कार्य दूसरे के पास चला जाए, तो दो हो जाते हैं, एक राजा और एक धर्मपालिका। अब उसके बाद जो है ना तीसरा स्टेज आती है कि राज्य सत्ता प्रजा के पास चली जाती है, सबके पास चली जाती है। अब उसमें हर एक विभाग, कितने विभाग बनते जाते हैं ये आपके सामने है, और वो भी सारे भ्रष्ट हो जाएंगे तो फिर पावर एक के पास ही आएगी, मतलब उसके पास राज सत्ता भी होगी और उसके पास धर्म सत्ता भी होगी, मतलब न्यायप्रिय राजा होगा। तो न्यायप्रिय राजा होगा तो नेचुरल है कि धर्म और उसके पास है। तो यहाँ पर आज देखते हैं कि आज की जो डेमोक्रेसी के अंदर है, राजतंत्र अलग है, प्रजातंत्र और क्या क्या बोलते हैं गवर्नमेंट अलग है, कार्यपालिका अलग है और एक न्यायपालिका अलग है। राजा राष्ट्रपति हो गया, कार्यपालिका मिनिस्टर डिपार्टमेंट हो गया जो कार्य करेंगे, और न्यायपालिका अलग हो गई। तो ये तीन प्रकार की जेना हो जाती है, उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं, और उसके बाद फिर वापस एक के पास आनी है। ये अरस्तु का साइकिल बोलता है और यही बाबा का साइकिल भी बोलता है, मतलब। और दोनों में मैंने आपको अंतर बताया कि अरस्तु ने कहा है कि ये चक्र 6000 साल का है और बाबा कह रहे हैं 5000। तो बहुत ही सिमिलरिटी जो है ना दोनों में मिलती है। बाकी शुक्राचार्य ने कहा 7000 साल का है एक का, जीरो का फर्क है, मतलब शुक्राचार्य और अरस्तु। और हमारे शास्त्रों में 5000 लिखा हुआ, हमारे शास्त्रों में विष्णु पुराण के अंदर लिखा है कि नारायण के कान की मैल से दो राक्षस पैदा हुए, मधु और कैटर। जागरण में ये कथा सुनाई जाती है, नारायण की कान की मैल से दो राक्षस पैदा हुए, मधु और कैटर, और 5000 साल तक नारायण उनके साथ युद्ध करते रहे। जब थक गए, नहीं लड़ सकते थे, तो उन्होंने ब्रह्मा को और शंकर को इनवाइट किया, तीनों ने मिलकर ज्योति से दुर्गा को उत्पन्न किया, और दुर्गा ने हुंकार भरी और मधु और कैटर का संहार किया और देवताओं को वापस असुरों से धरती को मुक्त करा के प्रदान किया। तो आप समझ सकते हैं कि चाहे वो बेचारे नहीं जानते, तो उन्होंने एक इशारा दिया है, तीनों ने मिलकर ज्योति से दुर्गा को उत्पन्न किया। तो वास्तव में जब हम पतित हो जाते हैं, तब हम वो ज्योति आकर हमें दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करने के लिए वो शक्तियां प्रदान करती है, जिससे हम फिर से क्या बन जाते हैं, पावन बन जाते हैं। ज्योति आकर हमें, परमात्मा आकर हमें शक्ति देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, जिससे हम असुरों पर विजय प्राप्त करके फिर से पुनः स्वर्ग की स्थापना करते हैं, देवी राज्य की स्थापना करते हैं। तो उसमें भी 5000 साल का ये जिक्र है कि नारायण ही तो 5000 साल रहता है, कृष्ण की आत्मा जो नारायण बनी और वही 5000 साल तक लड़ती है, और उसके कहां से है, कान की मैल से। कहीं सोच सकते हो कि कान की मैल से भी राक्षस पैदा होते हैं? किसी ने सुना क्या कान की मैल से राक्षस पैदा हो सकते हैं? क्योंकि मैंने इस पर भी ये भक्ति मार्ग की बातें हैं, परंतु इस भक्ति मार्ग की बातों में भी सत्यता है, कान की मैल से ही राक्षस पैदा होते हैं। कैसे होते हैं कान की मैल से राक्षस, इसको हम बहुत छोटे शॉर्ट में समझेंगे। हाँ जी,
सुनी सुनाई बातें से हम उसके ऊपर विश्वास कर लेते हैं और उसके रास्ते पे चलते हैं।
एक मैंने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर दिखाया गया कि इन पॉलीपैक दूध में पानी कैसे मिलाते हैं, कैसे पैक को पकड़ते हैं, कैसे उसमें सुराख करते हैं, कैसे उसमें दूध डालते हैं, कैसे दूध निकालते हैं और फिर पानी डालते हैं और फिर उसको सील करते हैं। उस टाइम तक मैं समझता हूँ कि बकायदा पूरा का पूरा प्रोसेस, मतलब इस भंडाफोड़ करने के लिए उन्होंने दिखाया, और इतना फुल प्रूफ तरीका है वो कैसे, और उसको एक को पता होगा उसने ऐसा करना शुरू किया होगा, परंतु जब उसका वीडियो बनकर सबके सामने वायरल हो गया तो सबको समझ में आ गया कि कैसे हमने इसको काटना है, कैसे हमने इसके अंदर से दूध निकालना है और कैसे पॉलीपैक दूध के अंदर पानी डालना है। तो अभी सबको समझ में आ गया ना, जब टेलीविजन पर उसको दिखा दिया गया, सबने सुन लिया और सबने देख लिया, तो अब मैक्सिमम लोग उस प्रकार का कार्य कर सकते हैं। तो मतलब मेरा समझाने का मतलब ये है कि बाबा भी आकर हमें कहते, देखना और सुनना ये दो दरवाजे हैं हर बुराई और अच्छाई को आने के, इनको रोको, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। बुरा देखने से और बुरा सुनने से ही राक्षस हमारे अंदर गया और हमने बुराइयां करना शुरू किया। जैसे कि फिल्म में दिखाया था उसी प्रकार से इसने मर्डर किया, उसी प्रकार से पाप किया, उसने उसी प्रकार से भ्रष्टाचार किया। तो इसी प्रकार से हमारे देवियों ने दिखाया रक्त बीज, मतलब उसका एक बूंद गिरता था नया रक्त बीज पैदा हो जाता था, एक बूंद गिरता था नया रक्त बीज पैदा हो जाता था। तो इसी प्रकार से एक बुराई सबको पता लगती है, जिसको जिसको पता लगती जाती है वो राक्षस बनता जाता है। आज सारे राक्षस बने कैसे, इसी तरीके से बने। अब परमात्मा आकर उन सबको मारने की वंडरफुल विधि सिखाते हैं कि वो खप्पर धारण करती है और खून को नीचे गिरने नहीं देती। वही बाबा अब आकर करते, बच्चे दरवाजा बंद करो, आंखों का भी और कानों का भी, यहां से राक्षस घुसता है, यहां से राक्षस को घुसने नहीं देते। ये विधि हमें परमात्मा आकर सिखाते हैं और हमें पुनः विजयी बनाते हैं। ये है राक्षसों का हमारे जीवन में आना। जब हम जीवन में इन राक्षसों को देखते हैं, इनके प्रभाव में आते हैं, तो ये हमारे अंदर गुस्से बढ़ते चले जाते हैं, और फिर 5000 साल बाद बाबा आकर हमें युक्ति सिखाते हैं और फिर से हमें विजयी बनाते हैं। ये 5000 साल का युद्ध बाकी कोई मधु और कैटभ कुछ अलग नहीं है। मधु और कैटभ माना मीठे और कड़वे। मीठे में आता है काम और मोह, और कड़वे में आता है अहंकार और क्रोध, क्योंकि ये दोनों देना बड़े कड़वे हैं। अहंकार ये कड़वे, तो मधु और कैटभ को मीठे और कड़वे, कैटभ माना कड़वे, मीठे और कड़वे कोई राक्षस नहीं होते हैं, ये हमारे अंदर जागृत होने वाले विकार ही हैं, जिनके साथ नारायण को पहले दिन से लड़ाई शुरू हो जाती है और आखिर तक लड़ता रहता है और फिर पहले दिन से लड़ाई शुरू हो जाएगी। तो मैं शॉर्ट में समझ में आ गया है। संगम युग पर खड़े हैं, पतित दुनिया से हम पावन दुनिया में जाते हैं। कलयुग है पतित युग, सतयुग है पावन युग। पतित मनुष्य पावन मनुष्यों के आगे जाकर नमस्ते करते हैं। हैं तो वे भी भारत के मनुष्य, परंतु ये देवी गुण वाले हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम भी बाप द्वारा ऐसे देवी गुण धारण कर रहे हैं। सतयुग में ये पुरुषार्थ नहीं करेंगे, वहाँ तो है प्रालंब, यहाँ पुरुषार्थ कर देवी गुण धारण करने हैं। सदैव अपनी जांच रखनी है, हम बाबा को कहाँ तक याद कर तमो प्रधान से सतो प्रधान बन रहे हैं। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रधान बनेंगे। बाप तो सदैव सतो प्रधान है, अभी भी पतित दुनिया पतित भारत है। पावन दुनिया में पावन भारत था, तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई कहते हैं जैसे भोजन जरूरी है वैसे ये विकार भी भोजन है, इनके बिना मर जाएंगे। अब ऐसी बात तो है नहीं, सन्यासी पवित्र बनते हैं फिर मर जाते हैं। क्या ऐसे ऐसे बोलना चाहिए? बोलने वाले के लिए समझा जाता है कोई बहुत अजामिल जैसे पापी होंगे जो ऐसे ऐसे कहते हैं, भला हम विकारों के बिना कैसे जिएंगे, मर जाएंगे हम तो। बोलना चाहिए क्या इस बिगर तो मर जाएंगे, जो भोजन से उनकी भेंट करते हैं, कहते विकार तो भोजन है, जैसे रोजाना भोजन खाना है ऐसे विकार भी जरूरी है। वो कहते इसके बिना क्या है संसार में, आए तो इसीलिए। स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वे होंगे सत्व प्रधान, फिर पीछे सत्व रजो तमो में आते हैं ना, जो पीछे आते हैं उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी ही नहीं, निर्विकारी दुनिया तो देखी ही नहीं है। तो वे आत्माएं ऐसे ऐसे कहेंगी कि इन बिगर हम रह नहीं सकते। सूर्यवंशी जो होंगे उनको तो फौरन बुद्धि में आएगा, ये तो सत्य बात है। बरोबर स्वर्ग में विकार का नामो निशान नहीं था, स्वर्ग में विकार का नाम निशान नहीं था। भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य भिन्न भिन्न प्रकार की बातें करते हैं। तुम समझते हो कौन कौन फूल बनने वाले हैं, कोई तो कांटे ही रह जाते हैं। स्वर्ग का नाम है फूलों का बगीचा, ये है कांटों का जंगल। कांटे भी अनेक प्रकार के होते हैं, है ना? अभी तुम जानते हो हम फूल बन रहे हैं, बरोबर ये लक्ष्मी नारायण सदा गुलाब के फूल हैं। इनको कहेंगे किंग ऑफ फ्लावर्स, देवी फ्लावर्स का राज्य है, देवी फूलों का राज्य है ना। जरूर उन्होंने भी पुरुषार्थ किया होगा, पढ़ाई से बने हैं ना। तुम जानते हो अभी हम फैमिली ईश्वरीय फैमिली के बने हैं, पहले तो ईश्वर को जानते ही नहीं थे, बाप ने आकर ये फैमिली बनाई है। बाप पहले स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उन द्वारा बच्चों को रखते हैं। बाबा ने भी इनको ब्रह्मा बाप माँ को एडॉप्ट किया है, बड़ी माँ है ये हमारी, ब्रह्मा बड़ी माँ, ब्रह्माना बड़ी माँ को एडॉप्ट किया, फिर इन द्वारा बच्चों को रचा। ये सब ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां है ना, ये नाता प्रवृत्ति मार्ग का हो जाता है। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, उसमें कोई मम्मा बाबा नहीं कहते, निवृत्ति मार्ग में कोई मम्मा बाबा नहीं होते, वहां एक गुरु होता है, बाकी सारे क्या होते हैं शिष्य होते हैं, और यहाँ होते हैं मम्मा बाबा। हमारे कितने मम्मा बाबा हैं, हमारे कितने मम्मा बाबा हैं, दो ही हैं,
दो मम्मा है दो बाबा है,
दो मम्मा है दो बाबा है,
तीन
हाँ किसके हैं तीन? नीलम के तीन है। कैसे तीन है जी आपके बताओ जरा। दो है मम्मा
के।
हाँ जी अच्छा लौकिक माँ बाप भी होते हैं? वो क्यों अलग होगी? वो भी तो है। एक लौकिक मम्मा बाबा है, एक अलौकिक मम्मा बाबा है और एक पारलौकिक मम्मा बाबा है। हाँ तो परम पिता परमात्मा वो हमारी माँ भी है, शिव बाबा हमारा बाप भी है, वो अकेला ही बनता है। यानी ब्रह्मा हमारा बाप है तो मम्मा हमारी माँ है, मतलब ये प्रजापिता ब्रह्मा और प्रजापिता जगत अम्बा मम्मा, परंतु वो अलौकिक है, इन्होंने हमें अलौकिक पालना की और ये हो गए लौकिक। लौकिक अलौकिक और पारलौकिक, पारलौकिक माँ बाप एक ही है। वो ब्रह्मा की भी माँ है, ब्रह्मा का भी बाप, मतलब ब्रह्मा का माँ और बाप से बाबा है, उसको अलग से कोई माँ नहीं, वो खुद माँ बनता है, परंतु वो बाकियों की माँ नहीं, बाकियों की माँ बनता है परंतु अपनी माँ नहीं बनता। और जो भी सत्संग है वे सब निवृत्ति मार्ग के हैं, ये एक ही बाप है जिसको मात पिता कह पुकार, एक ही बाप है, उसको माँ भी कहते हैं और उसको बाप भी कहते हैं। बाप बैठ सम जाते हैं, भारत में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र हो गया है, मैं फिर से वही प्रवृत्ति मार्ग स्थापन करता हूँ। तुम जानते हो हमारा धर्म बहुत सुख देने वाला है, जो बाबा आकर के थे, हम आकर के धर्म की स्थापना करते हैं, वो सबको सुख देने वाला, क्योंकि उसका लक्ष्य है सर्वे भवन्तु सुख, सबका जिसमें कल्याण। वही आत्माएं सत्युग के आदि में आती हैं, जिनकी बुद्धि में ये संस्कार बना होता है, सबका कल्याण में मेरा कल्याण, सबके कल्याण में मेरा कल्याण। जब तक हम हद में हैं, तब तक बुद्धि में समझ लेना है, फैसला कर सकते हो कि मैं सत्युग में आने वाली आत्मा नहीं। जब मेरे अंदर ये संस्कार नहीं बन जाता कि सर्वे भवन्तु सुखी, सबके सुखी होने में ही मुझे सुख है, जब तक ये संस्कार हमारा नहीं बना है, तब तक अपनी बुद्धि को समझ लो, बुद्धि के अंदर अच्छी तरह फैसला कर लो कि हम सत्युग में आने वाली आत्मा नहीं है, वो आ ही नहीं सकती हो, जो सबका कल्याण नहीं सोच। तुम स्वर्ग में कितने सुखी रहते हो, हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, यहाँ बल अमेरिका रशिया आदि में कितने सौकार हैं, परंतु स्वर्ग जैसे सुख हो नहीं, सोने की ईंटों जैसा महल तो कोई बना ना सके, सोने का पर्स
बिना ज्ञान के तो कोई आत्मा सुखी हो नहीं सकती, तो हर आत्मा को ज्ञान देना जरूरी है जो भी अपने पास है। यही बाबा का
बिल्कुल सुखी हो, हमें हमारे अंदर सबको देने की एकदम इच्छा हो, लेना हर एक ने अपने अपने पार्ट के मुताबिक है, हम अपना कर्म करते रहें, हम हर एक को ये देते रहें। कोई बाबा ने बाबा सर कोई बना ना सके, सोने के महल होते हैं, एक वो अपने कौन सा भी प्रधानमंत्री है और राष्ट्रपति को अपने छोटे से देश का, बहुत ही छोटा सा देश है, जहाँ अभी प्रधानमंत्री गए थे, मुस्लिम कंट्री है, वहां पर शरिया का कानून लागू होता है, उसके महल पर सारे महल पर सोने की परत लगी हुई है, छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा देश, और उसकी गाड़ियां सोने की, उनके खाने के बर्तन सोने के, मतलब हर एक चीज पर गोल्ड दूर से दिखाई देता है, मतलब गोल्ड ही गोल्ड है उसकी। और हाँ जी
मॉरिशस
नहीं, मॉरिशस नहीं, बहुत छोटा सा देश है, और वहां पर वो गया था ब्रियान पत्नी ब्रह पर, राजा का नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो उसके साथ दिखाया था कि वहां पर मतलब बहुत ही छोटा सा है और परंतु उसके पास गोल्ड है, और गोल्ड जो है ना सारे गाड़ियों पर, गाड़ी सोने की, गाड़ी सोने की है, सीधी सी बात है, पार्ट जो है ना सोने की चाहिए, स्पेशल बनवाई होगी क्योंकि बन ऐसे तो बन नहीं सकती ना, तो स्पेशल बनवाने के लिए सोचिए कि सोने की पर्त चढ़वाना सारी गाड़ी पर, और फिर ओपन बिल्डिंग, उनकी जो सारी बिल्डिंग है वो दूर से दिखाई देती है जो रहने वाला बिल्डिंग के बाहर।
हाँ जी भाई, कौन वो देश कौन सा है
भाई जी? देश मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, पर हमारे मोदी जी वहां पर गए थे, उसके बाद वो सिंगापुर गए थे, उस वहां उसने विजिट किया और बकायदा, और वो मतलब क्या है कहने का, उसके बारे में काफी जाना भी था तो ये सारा देखा था मैंने उसके बारे में, तो मतलब मेरा कहने का है कि नाम मुझे याद नहीं आ रहा, चीन के पास पड़ता है कहीं। हाँ जी, नहीं नहीं दुबई से ही, कुछ दुबई से उसके आगे कुछ नहीं, मतलब कहने का कुछ छोटा सा राज्य है और उसे छोड़ दिया गया था कि उसने उसको संभाला और सब कुछ उसके हाथ में आ गया, उसने सबको फ्री कर रखा है एकदम, वहां किसी को कोई भी टेंशन नहीं, मतलब बाकी कानून बड़ा सख्त है, यदि तुमने गलती की तो तुम्हारा हाथ काट दिया जाए सीधा सीधा। हाँ जी, नहीं शरिया कानून लागू होता है, मुस्लिम कंट्री है, और उसके लिए गवर्नमेंट ने सारी पूरी दुनिया ने विरोध किया कि नहीं शरिया कानून लागू नहीं करना, परंतु उसने अपने राज्य में वही कानून लागू करके रखा है, वहां कोई गलती करता है मतलब कोई आंध दिखाई नहीं दे, उसकी वाइफ के लिए भी था कि वाइफ भी बाहर निकलते तो पूरे शरीर से ढके हुए होते, मतलब कोई अपने अंग का प्रदर्शन नहीं कर सकते, मतलब इतना मतलब उसका वहां पर कोई भी मतलब गलती करे शरिया कानून के अनुसार उसे तुरंत सजा मिलेगी, वो सबके लिए एक ही। हाँ जी, हाँ पूरा दब कर सोने के महल होते ही हैं, सतयुग में यह सोना है ही कहाँ, वहां तो हर जगह हीरे जवाहरात लगे हुए होंगे, यहाँ तो हीरों का भी कितना दाम हो गया, मतलब बाबा कह रहे वहां के राजा के पास होगा तो वो भी पर्त लगी हुई है, और ये तो सतयुग में हमारे पास सोने की ईंटें होंगी, सोने की ईंटों से पूरा सोलिड मकान बनाया जाएगा, उसमें हीरे लगे हुए हैं, ये सब मिट्टी में मिल जाएगा, बाबा ने समझाया है नई दुनिया में फिर सब नई खानियां भरती हो जाएंगी, अभी ये सब खाली होती है, खाली होती रहेंगी, दिखाते हैं सागर ने हीरे ज्वारातों की थालियां भेंट की, हीरे ज्वारात तो वहां तुमको ढेर मिलेंगे, सागर को भी देवता रूप समझते हैं, तुम उस देश ने कभी किसी से लोन नहीं लिया, उस देश की विशेषता थी कि उसने किसी भी देश से लोन नहीं लेता, ना देता, ना लेता है ना देता है, बाकी उसके पास तेल ही तेल है, तेल बेचता है और अपने सारी प्रजा को खुश रखता है। ज्ञान सागर बाप हमें रोज ज्ञान रत्नों ज्वारातों की थालियां भरकर देते हैं, बाकी वे तो पानी का सागर है, बाप तुम बच्चों को ज्ञान रत्न देते हैं जो तुम बुद्धि में भरते हो, जितना योग में रहेंगे उतना बुद्धि कंचन सोने की होती जाएगी, पवित्र होती जाएगी, ये अविनाशी ज्ञान रत्न ही तुम साथ ले जाते हो, बाप की याद और ये नॉलेज है मुख्य, बाबा की याद और ये ज्ञान जो है मुख्य है, तुम बच्चों को अंदर में बड़ा उल्लास रहना चाहिए, बाप भी गुप्त है तुम भी गुप्त सेना हो, नॉन वायलेंस अननोन वॉरियर्स कहते हैं ना, फलाना बहुत पहलवान है वॉरियर्स, फलाना बहुत पहलवान वॉरियर्स हैं, परंतु नाम निशान का पता ही नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई ऐसे वॉरियर्स हो जिसका नाम निशान ना हो, ऐसे तो हो नहीं सकता। गवर्नमेंट के पास एक एक का नाम निशान पूरा होता है, अननोन वॉरियर, नॉन वायलेंस, ये तुम्हारा नाम। वो दुनिया में कहते हैं कि गुप्त योद्धा है, कौन है गुप्त योद्धा, कभी भी कोई हो नहीं सकता। बेशक सीक्रेट फोर्स होती है, परंतु वो सीक्रेट फोर्स भी, उसका भी नाम गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होता है। गुप्तचर जिसे बोलते हैं, गुप्त सेना बोलते हैं, परंतु उस गुप्त सेना का नाम निशान गवर्नमेंट के पास होता है। और यहाँ अननोन वॉरियर्स कौन है, हम सब आत्माएं, हमारा रिकॉर्ड कहीं भी नहीं। हम है अननोन वॉरियर्स, कहीं भी पूरी दुनिया में हमारा किसी पे किसी रिकॉर्ड नहीं है कि ये ब्रह्मा कुमारियां अपना गुप्त युद्ध कर रहे हैं। हमारा युद्ध किसी मनुष्य के साथ नहीं है, हमारा युद्ध हमारी बुराइयों के साथ। नॉन वायलेंस, हम कभी किसी को दुख नहीं दे सकते। जब तक दुख दे रहे हैं तब तक हम सेना के सैनिक नहीं है, हमने किसी को दुख भी नहीं दे सकते। नॉन वायलेंस, ये तुम्हारा नाम है। सबसे पहली हिंसा है काम विकार। ये विकार जो ही आदि मध्य अंत दुख देते हैं, इसलिए तो कहते हैं हे पतित पावन, हम पतितों को आकर पावन बनाओ। पावन दुनिया में भी एक भी पतित नहीं होता, एक भी पतित नहीं हो सकता, ये तुम बच्चे ही जानते हो। अभी ही हम भगवान के बच्चे बने हैं, बाप से वर्षा लेने, परंतु माया भी कम नहीं है। माया का एक ही थप्पड़ ऐसा लगता है जो एकदम गटर में गिरा देती है। विकार में जो गिरते हैं तो बुद्धि एकदम सख्त हो जाती है। बाप कितना समझाते हैं आपस में, देहधारी से कभी प्रीत नहीं रखो। तुमको प्रीत रखनी है एक बाप से, कोई भी देहधारी से प्यार नहीं रखना है, मोहब्बत नहीं रखनी है, मोहब्बत रखनी है उनसे जो देह रहित विचित्र बाप है। देह रहित विचित्र, जिसका कोई चित्र नहीं, ऐसा बाप है। बाप कितना समझाते रहते हैं फिर भी समझते नहीं। तकदीर में नहीं है तो एक दो की देह में फंस पड़ते हैं। बाबा कितना समझाते हैं, तुम भी रूप हो आत्मा और परम आत्मा का, रूप तो एक ही है। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती है, आत्मा अविनाशी है, हर एक का ड्रामा में पार्ट मुंडा हुआ है। अभी कितने ढेर मनुष्य हैं, फिर 9-10 लाख होंगे, फिर 9-10 लाख होंगे। सतयुग आदि में कितना छोटा झाड़ होता है, परलय कभी होती नहीं। जानी होती है परलय कभी होती नहीं। तुम जानते हो जो भी मनुष्य मात्र हैं, उन सब की आत्माएं मूल वतन में रहती, कहाँ रहती हैं, मूल वतन में रहती हैं। उनका भी झाड़ है, बीज डाला जाता है, उनसे सारा झाड़ निकलता है ना, उनसे सारा झाड़ निकलता है ना। पहले पहले दो पत्ते निकलते हैं, ये भी बेहद का झाड़ है। गोले पर समझाना कितना सहज, विचार करो। अभी है कलयुग, सतयुग में एक ही धर्म था, तो कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी कितने मनुष्य, कितने धर्म हैं, इतने सब जो पहले नहीं थे, वे फिर कहाँ जाएंगे। सभी आत्माएं परम धाम में चली जाती हैं। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है, जैसे बाप ज्ञान का सागर है, वैसे तुमको भी बनाते हैं। तुम पढ़कर ये पद पाते हो, बाप स्वर्ग का रचयिता है तो स्वर्ग का वर्षा भारतवासियों को ही देते हैं, बाकी सबको वापस घर ले जाते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे, जितना श्री मत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। सारा मदार पुरुषार्थ पर है, मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनना है तो पूरा पूरा फॉलो फादर मदर। सत्य नशील बनने के लिए उनकी चलन अनुसार चलो, औरों को भी आप समान बनाओ। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियां बतलाते हैं। एक बैज पर ही तुम किसको भी अच्छी रीति बैठ समझाओ। पुरुषोत्तम मास होता है तो बाबा कह देते पितृ श्री दे दो। पुरुषोत्तम मास होता है तो बाबा कह देते पितृ फ्री दे दो। बाबा सौगात देते हैं, पैसे हाथ में आ जाएंगे तो जरूर समझेंगे। बाबा का भी खर्चा होता है ना, तो फिर जल्दी भेज देंगे। घर तो एक ही है ना, इन ट्रांस लाइट के चित्रों की प्रदर्शनी बनेगी तो कितने देखने आएंगे। पुण्य का काम हुआ ना, मनुष्य को कांटे से फूल बाप आत्मा से, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनाते हैं। इसको व्यंग मार्ग कहा जाता है, मतलब बड़े बड़े लेवल की सेवा कहा जाता है, हाई लेवल उड़ती कला की सेवा। प्रदर्शनी में स्टॉल लेने से बहुत आते बहुत है, खर्चा कम होता है। तुम यहाँ आते हो, आते ही हो बाप से स्वर्ग की राजाई खरीद करने, तो प्रदर्शनी में भी आएंगे स्वर्ग की राजाई खरीद करने। यह हट्टी है ना। बाप कहते हैं इस ज्ञान से तुमको बहुत सुख मिलेगा, इसलिए अच्छी रीति पढ़कर पुरुषार्थ करके फुल पास होना चाहिए। बाप ही बैठ अपना और रचना के आदि मध्य अंत का राज परिचय देते हैं और कोई दे ना सके। अब बाप द्वारा तुम त्रिकालदर्शी बनते हो। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे यथार्थ रीति कोई नहीं जानते, तुम्हारे में भी नंबरवार है। अगर यथार्थ रीति जानते तो कभी छोड़ते नहीं, कभी छोड़ते नहीं। यह है पढ़ाई, भगवान बैठ पढ़ाते हैं, कहते हैं मैं तो तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट हूं। कौन ओबीडियंट सर्वेंट है? कौन है ओबीडियंट सर्वेंट?
बाबा।
किसका बाबा? हमारा बाबा हमारा ओबीडियंट सर्वेंट। कितना नशा होना चाहिए, सारे संसार का मालिक हमारा नौकर है भाई। कितनी वैल्यू है हमारी, ये नशा चढ़ाना चाहिए। ड्रामा में हमारा पार्ट ही ऐसा है, फिर सबको साथ ले जाऊंगा। श्री मत पर चल पास विद ऑनर होना चाहिए। पढ़ाई तो बहुत सहज है, सबसे बुद्धा तो ये पढ़ाने वाला है। कौन है सबसे बुद्धा? कौन है पढ़ाने वाला? पढ़ाने वाला कौन है? सब हाँ जी
बाबा
वाला तो सबसे बूढ़ा तो ये पढ़ाने वाला है। शिव बाबा कहते मैं बूढ़ा नहीं।
ब्रह्मा बाबा को बोला है शायद बाबा।
आत्मा कभी बुरी नहीं होती, बाकी पत्थर बुद्धि बनती है। मेरा मेरी तो है ही पारस बुद्धि, बाबा कहते मेरी तो पारस बुद्धि है। तब तो तुमको पारस बुद्धि बनाने आता हूँ, कल्प कल्प आता हूँ, अनगिनत बार तुमको पढ़ाता हूँ, फिर भी भूल जाएंगे। सतयुग में इस ज्ञान की दरकार ही नहीं रहती। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं, ऐसे बाप को फिर पारकती दे देते हैं। इसलिए कहा जाता है महान मूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। ऐसा बाप जिससे स्वर्ग का वर्षा मिलता है उनको भी छोड़ देते हैं। बाप कहते हैं तुम मेरी मत पर चलेंगे तो अमर लोक में विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। ये मृत्यु लोक है, बच्चे जानते हैं हम सो पूज्य देवी देवता थे, हम सो फिर पूज्य देवी देवता थे, अभी हम क्या बन गए हैं पतित भिखारी, अब फिर हम तो प्रिंस बनने वाले हैं। सब का तो एक रस पुरुषार्थ तो हो ना सके, कोई टूट पड़ते हैं, कोई ट्रेटर बन जाते हैं। टूट पड़ने वाले छोड़ के चले जाते हैं और ट्रेटर बनने वाले जाकर यूट्यूब पर अनाउंसमेंट करते हैं कि ब्रह्मा कुमारियों को हम छोड़ के आए हैं क्योंकि वो गंदी है, वो खराब है, वो हमें उल्टे उल्टे पाठ पढ़ाती है। ट्रेटर बनना मतलब जाकर के विरोध करना, विपरीत विपरीत जो है ना प्रचार प्रसार करना, उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए सिवाय ज्ञान की बातों के। और कुछ पूछें तो समझो शैतानी है, संग तारे कुसंग तोड़े। जो ज्ञान में होशियार बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं उनका संग करो, वह तुमको ज्ञान की मीठी मीठी बातें सुनाएंगे। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर एक, जो देह रहित विचित्र है उस बाप से मोहब्बत रखनी है, किसी देहधारी के नाम रूप में बुद्धि नहीं फंसानी है, माया का थप्पड़ ना लगे ये संभाल करनी है। जो ज्ञान की बातों के सिवाय दूसरा कुछ भी सुनाए उसका संग नहीं करना है, फुल पास होने के का पुरुषार्थ करना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान एक बाप दूसरा न कोई, इस स्मृति से बंधन मुक्त योग युक्त भव। अब घर जाने का समय है इसलिए बंधन मुक्त और योग युक्त बनो। बंधन मुक्त अर्थात लूज स्ट्रेस टाइट नहीं, ऑर्डर मिला और चेक इन में गया। जैसे बंधन मुक्त योग युक्त स्थिति का वरदान प्राप्त करने के लिए सदा ये वायदा स्मृति में रहे कि एक बाप दूसरा ना कोई, क्योंकि घर जाने के लिए वा सतयुगी राज्य में जाने के लिए इस पुराने शरीर को छोड़ना पड़ेगा। तो चेक करो ऐसे ऐसे एवर रेडी बने हुए या अभी तक कुछ रस्सियां बंधी हुई हैं, ये पुराना चोला टाइट तो नहीं है। स्लोगन है व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन नहीं करो तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। अव्यक्त इशारे
तो दोबारा करो जो अच्छी तरह स्लोगन वाला
व्यर्थ संकल्प रूपी एक्स्ट्रा भोजन, फालतू जो भोजन जरूरत नहीं है, हम व्यर्थ के संकल्प चलाते रहते हैं जिनका हमारे जीवन में कोई लाभ ही नहीं है, तो मोटेपन की बीमारियों से बच जाएंगे। क्योंकि हम अपने आप में व्यर्थ की बातें सोच करके अपने आप को मोटा करते रहते हैं। मोटापा क्या है? ऐसा व्यर्थ भूल भोजन जो हमने फालतू खा लिया वो हमारे शरीर में बड़ा बीमारियों का घर बनता है। इसी प्रकार से व्यर्थ संकल्प में हम बिजी तो सारा दिन रहे, व्यर्थ की बातें सोचते रहे तो वो हमारी बीमारियां बन जाती है, तो जिनके कारण हमारा जीवन स्वर्ग में जाने की बजाय नर्क वाला बन जाता है। तो बाबा कहते हैं व्यर्थ की व्यर्थ भी जो है ना एक बीमारी का कारण बनता है जिसको मोटापा कहते। तो अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। बाप को सबसे बढ़िया चीज लगती है सच्चाई, इसलिए भक्ति में भी कहते हैं गॉड इज ट्रुथ, परमात्मा जो है वो सत्य है। सबसे प्यारी चीज सच्चाई, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है उसमें सफाई रहती है, वे क्लीन और क्लियर रहता है। तो सच्चाई की विशेषता कमी कभी नहीं छोड़ना, सत्यता की शक्ति एक लिस्ट का काम करती है। अच्छा ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम